ये सुनते ही सब हैरानी से आस्तिक को देखने लगे। कीर्ति तो खुशी से चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या सच में अमृता ताई आ रही हैं? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर वो अचानक कैसे आ रही हैं? हम तो उनको कब से बुला रहे थे, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया और अब अचानक से आने के लिए कह रही हैं। आस्तिक ने कहा, हाँ, वो प्रणाली की शादी के लिए आ रही हैं। जब उन्हें इस बात का पता चला कि मैंने प्रणाली और जीवन की शादी की तारीख तय कर दी है, तो मुझ पर बहुत गुस्सा हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने खुद यहाँ पर आकर सब कुछ संभालने का डिसीजन लिया। प्रणाली खुश होते हुए बोली, अरे वाह, अमृता ताई आ रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, अब हमें माँ की कमी महसूस नहीं होगी। अरुणिमा उनकी सारी बातें सुन रही थी। वैसे तो उसे ये नहीं पता था कि अमृता ताई कौन है, पर इन सब की बातों से ऐसा लगता है कि वो कोई खास इंसान ही है। अरुणिमा का खाना खत्म हो गया, वो अपनी जगह से उठी और अपनी प्लेट लेकर खड़ी हो गई। अरुणिमा किचन की तरफ जा ही रही थी कि इतने में आस्तिक ने अरुणिमा को देखकर कहा, रानी साहिबा। ये सुनते ही अरुणिमा के कदम रुक गए। उसने पलटकर आस्तिक को देखा तो आस्तिक बोला, मैं चाहती हूँ कि अमृता ताई की देखभाल आप करें। याद रखें कि उनकी सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। इतना तो कर ही सकती है ना, आखिर आप घर की बहू हैं। अरुणिमा धीरे से हाँ में सर हिला दी। पृथ्वी वहां से सिटी हॉस्पिटल के लिए चला गया, क्योंकि कल पार्टी की वजह से उसे जल्दी आना पड़ा था, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट केस पेंडिंग था। पृथ्वी हॉस्पिटल में अपने केबिन में बैठा था और अपने केस पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और पृथ्वी की ही उम्र का एक आदमी अंदर आते हुए कहने लगा, हाय पृथ्वी, कैसे हो? पृथ्वी जब उसे आदमी को देखा तो मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, रोशन, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? पृथ्वी बोला, अरे यार, कहाँ हो तुम? पिछले दो दिन से मैंने कितने फ़ोन किए तुम्हें, लेकिन तुम मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहे थे। मेरे घर पर एक पार्टी थी, उसके लिए तुम्हें इनवाइट करना था। पृथ्वी सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, मैंने देखे हैं तुम्हारे सारे मिस कॉल, लेकिन सब कुछ इतना मिसमैच हो रखा था ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें कॉल बैक कर सकूं। एक्चुअली मैं दिल्ली गया हुआ था। उसके बाद रोशन अपना हाथ आगे करते हुए पृथ्वी को अपने रिंग फिंगर में पहनी हुई रिंग दिखाते हुए बोला, मेरी इंगेजमेंट हो गई है। पृथ्वी खुश होते हुए बोला, क्या तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई है? कंग्रेचुलेशंस, लेकिन अचानक से तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई, तुमने तो किसी को कुछ बताया भी नहीं। रोशन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ एक्चुअली ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला, और शादी की डेट भी बहुत पास की है। यार, मैं नहीं चाहता मेरे सारे दोस्तों को दिल्ली आना है मेरी शादी में। पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और उसे कहा, अफकोर्स यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है? रोशन कहने लगा, वैसे मैंने कल बैचलर पार्टी रखी है और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर बहुत इन्जॉय करें। पृथ्वी कुछ सोचने लगा और बोला, वैसे तो मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आ पाऊंगा या नहीं। इस पर रोशन ने सिद्ध करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो आना ही होगा, तुम तो हमारे पार्टी की जान हो, और यार बैचलर पार्टी है तो सिर्फ लड़के ही होंगे और तुम्हें इस पार्टी में आना ही है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे लड़के मिलकर तुम्हारा किडनैप कर लें और फिर राजा साहब हम सबको बम से उड़ा दें। पृथ्वी हंसने लगा और कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा देर तक पार्टी में नहीं रुकूंगा। रोशन ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ पार्क में शारदा जी और प्रताप एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और शारदा जी हैरानी से अपने हाथ में पकड़ी हुई उस फाइल को देख रही थीं। उन्होंने झटके से फाइल को बंद करते हुए प्रताप जी की तरफ किया और कहा, ये क्या है प्रताप, ये क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? प्रताप भी हैरानी से बोला, मैं क्या करूं शारदा, मैं खुद इस फाइल को देखकर हैरान हूं। उसकी इस बात पर शारदा जी परेशान होते हुए बोली, लेकिन तुम्हें ये फाइल मिली कहां से? प्रताप ने कहा, बहुत मुश्किल से मुझको ये फाइल मिली है, मेरा एक रिश्तेदार क्राइम ब्रांच में है, इस फाइल को ढूंढने के लिए मुझे उसे 20,000 रुपए देने पड़े, तब कहीं जाकर उसने मुझे ये फाइल ला कर दी है, और तुम्हें पता है इस फाइल को पलकर मुझे ये यकीन हो गया है कि आस्तिक रायचंद का जरूर सीमा से कुछ रिश्ता है। शारदा जी गुस्से में खड़ी हुई और बोई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इसका सीमा से रिश्ता कैसे हो सकता है, सीमा एक मामूली सी लड़की थी और ये तो राज परिवार से है, सीमा और आस्तिक का कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। प्रताप ने कहा, ऐसा तुम्हें लगता है शारदा, लेकिन जरा सोचो सारी कड़ियां आपस में किस तरीके से उलझी हुई हैं। बड़े राजा साहब की बेटी अब्रॉड में पढ़ते वक्त एक कार एक्सीडेंट ने मारी जा चुकी है और सीमा को तुमने खुद अपने हाथों से मारा है। शारदा जी गुस्से में प्रताप को देखते हुए बोली, हाँ मुझे पता है कि मैंने सीमा को अपने हाथों से मारा है, उसके बच्चों को भी मैं ही मारा है, जब वो सब मर चुके हैं तो आस्तिक का उससे क्या रिश्ता हो सकता है? प्रताप उस फाइल को उठाया और हवा में हिलाते हुए कहा, ये फाइल इस बात का सबूत है कि सीमा के जले हुए घर में उसके बच्चों की लाश नहीं थी, वहां पर उन्हें सिर्फ एक मरी हुई औरत की डेड बॉडी मिली है और हो सकता है वो सीमा ही हो, वहां पर किसी बच्चे की कोई डेड बॉडी नहीं मिली है। शारदा जी का पूरा चेहरा गुस्से में भर गया और उन्होंने गुस्से में कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब गलत है, इन सब में कोई भी सच्चाई नहीं है, आस्तिक का सीमा से कोई रिश्ता नहीं है, आस्तिक और सीमा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, मुझे पता है ये सब एक साजिश है, एक चाल है।